पिछले अध्याय में आपने देखा कि आर्यन ने सानवी को फिल्म देखने के लिए रुकने को कहा और वो मान गई। अयान के घर लौटने पर परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। अयान सबके बारे में पूछता है और सबसे मिलता है। नावेद साहब को जोया की याद आती है। जुबैर अयान के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। अयान अपनी भतीजियों से बातें करता है। ज़ारा हॉस्टल जाने का सोचती है। जोया हॉस्टल जाने की बात करती है, पर अयान और नावेद साहब उसे रोक लेते हैं। जोया अयान की नज़रों से असहज महसूस करती है। नाउ नेक्स्ट। अयान अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान वहां मौजूद किसी और चीज़ पर नहीं बल्कि सामने बैठी जोया पर अटक गया था। वो कई बार कोशिश कर रहा था कि नज़रें हटा ले, अपने कप में झांक ले, आसमान की तरफ देख ले या फिर पास बैठे नावेद साहब की बात सुन ले, मगर जैसे कोई अदृश्य डोर उसकी आंखों को खींचकर फिर जोया तक पहुंचा देती थी। जोया के चेहरे में कुछ था जो उसका दिल उसकी ही कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वही बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें झुकती हुई पलकें जैसे हर बार उसकी धड़कनों को थाम लेती थीं। अयान ने महसूस किया जैसे उसके सीने में अचानक कोई अनजाना खिंचाव भराया हो। अयान की नज़रें जोया के चेहरे पर ठहर गईं। पल भर बाद उसका ध्यान जोया के नाक में पहनी हुई छोटी सी नथनी पर गया जो उसकी नन्ही सी नाक को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसे जोया की हर अदा, हर बात और उसकी हर छोटी सी चीज़ दिल को छू जाने वाली लग रही थी। वो अपनी जगह पर बिल्कुल चुप बैठा बस उसे देखता रहा। उसके गालों की हल्की सी गुलाबी आभा, उसकी पलकों की धीमी झपक और सलवार सूट में उसकी सादगी, सब कुछ अयान के लिए जैसे किसी लंबे समय से भूले हुए सुकून का दरवाज़ा खोल रहा था। जोया का सलवार सूट सादा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अजीब सी खूबसूरती थी। हल्का आसमानी रंग जिस पर सफ़ेद कढ़ाई जैसे उसे और भी नर्म और कोमल बना रही थी। उसके कानों में झूलते छोटे से मोती हर बार पलसे झुकने पर हल्के से हिलते और अयान की निगाह वहीं ठहर जाती। उसकी नज़रों में अब कोई हड़बड़ी नहीं थी बल्कि एक ठहरी हुई गहराई थी जैसे वो हर लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। जोया, जो अब तक चाय के कप में नज़रें गड़ाए बैठी थी, धीरे धीरे बेचैन होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, इतनी गहराई से, इतनी तन्मयता से कि उसका चेहरा गर्म होने लगा। वो नज़रें उठाकर सामने देखना चाहती थी पर डर था कि उस निगाह का सामना करते ही उसका चेहरा पढ़ लिया जाएगा। आसपास बैठे किसी को भी इस बदलते माहौल का अंदाज़ा नहीं था। सभी अपनी बातचीत में मशगूल थे सिवाय सारा के। सारा ने एक पल के लिए अयान की आंखों का पीछा किया और देखा कि वो सीधा जोया को देख रहा था। अयान को शायद इस बात का होश भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं मगर दिल की धड़कन जैसे हर पल तेज हो रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये बेचैनी है या सुकून। बस इतना पता था कि सामने बैठी ये लड़की उसके भीतर के किसी ऐसे हिस्से को छू रही थी जिसे वो बहुत पहले बंद कर चुका था। जोया ने कप से आखिरी घूंट लिया और मेज़ पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। उसने नज़रें उठाई बस एक सेकंड के लिए और अयान की आंखों में देख लिया। वो पल जैसे थम गया, उसके भीतर कुछ डगमगाया और फिर उसने जल्दी से नज़रें झुका लीं। अयान ने हल्की सी मुस्कान दबाई, ऐसी मुस्कान जिसमें कोई और न समझ पाए, मगर उसने खुद के भीतर उठी हल्की लहर को महसूस किया। मैं, जोया ने जल्दी जल्दी से चाय का कप खत्म किया। अरे जोया, तुमने तो इतनी गर्म चाय पी ली, बेगम साहिबा ने उसे देखकर कहा, क्योंकि जोया ज्यादा गर्म चाय पीना पसंद नहीं करती थी। बेगम साहिबा की अगली बात पर जोया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, असल में मुझे ज़रा काम है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी से निकल गई। असल में वो अयान की नज़रों से बचना चाहती थी। अपने कमरे में पहुंचकर वो सीधे बिस्तर पर बैठ गई। आखिर उसे हो क्या गया है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, उसने अपने आप से पूछा। इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, फिर भी आज क्यों उसकी नज़रें मुझसे सहन नहीं हो रही। जोया को अयान का गुस्सा पहचानना आसान है, मगर उसके प्यार या कोमलता को पहचानना कहीं ज्यादा मुश्किल। और वो मान रही थी आज जो कुछ भी महसूस हुआ उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा, मगर न जाने क्यों आज उसने मुझे हॉस्टल जाने से रोक दिया। मामा जान और मामू जान की बातों का भी असर उस पर था, शायद इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बिस्तर पर बैठी जोया की सोचों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। वो बेचैन थी और परेशान भी। जोया अपने मन में सोच रही थी, इस आदमी ने मुझे हमेशा परेशान किया है, कभी मुझसे लड़ाई करता था, कभी बेवजह झगड़ा। वो मन ही मन उसे कोस रही थी, जबकि आज तो उसने कुछ कहा भी नहीं था। उसने हमेशा अयान को ऐसा देखा था जो दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता, शराब के नशे में डूबा हुआ, अहंकार में भरा हुआ, मगर आज उसके सामने बैठा अयान बिल्कुल अलग था, इतना अलग कि जोया की समझ से परे था। अयान जोया के बारे में सोच रहा था और जोया अयान के बारे में। दो लोग जो एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे, मगर शायद किस्मत उन्हें फिर से एक दूसरे की जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। लेकिन ये उतना आसान नहीं था। अयान की जो हरकतें अतीत में हो चुकी थीं, जोया उन्हें कभी माफ करने वाली नहीं थी। उसने अयान को दूसरी लड़कियों के साथ भी देखा था और वो तस्वीरें उसके दिल से मिटना नामुमकिन था। रात को खाने के बाद लिविंग रूम में पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी थी। बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियों का माहौल लौटा था। पिछले कुछ महीनों से अयान की तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी वजह से नावेद साहब और उनकी बेगम बहुत परेशान रहते थे। घर के सभी लोग मायूस से हो गए थे, लेकिन आज सबके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। करीब 3 महीने बाद अयान घर आया था। अब वो पहले से काफी बेहतर था। डॉक्टर ने उसे कुछ परहेज बताए थे और वो उनका पालन भी कर रहा था। बस एक कमी थी, जोया उन लोगों के बीच आकर नहीं बैठी थी। जब अयान की नज़र चारों तरफ घूमी और उसे जोया दिखाई नहीं दी तो उसने हल्की सी चिंता के साथ इधर उधर देखा। साथ में वो ये भी जानता था जोया उसी की वजह से इन सब के बीच जाकर नहीं बैठी थी। उसे खुद की हरकतें याद थीं कि वो कैसे किस तरीके से जोया से बात करता था और उसने तलाक मांगा था। जोया खाना खाने के बाद बाहर लॉन में टहल रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी और वो अपने ख्यालों में खोई थी। टहलने के बाद वो लिविंग रूम में आई, मगर वो इग्नोर करती हुई अपने कमरे में जाने लगी। सारा जो खाने के बाद अपने कमरे में किसी काम से चली गई थी, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसकी नज़र सीधे जोया पर पड़ी जो कमरे की तरफ जाने लगी थी। सारा तेजी से उसके पास पहुंची, उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ फूफो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जोया ने थोड़ी झिझक के बाद मना नहीं किया और सारा के साथ ही लिविंग रूम में जाकर बैठ गई। नावेद साहब सबके साथ हंसी मजाक और बातें कर रहे थे, लेकिन सारा का ध्यान कहीं और था। उसने शाम को जो देखा था वो उसके जहन से निकल नहीं रहा था। जिस तरह से अयान जोया को देख रहा था उसमें कुछ तो अलग था। सारा को पक्का यकीन था कि चाचू के दिल में जोया फूफी के लिए फीलिंग्स थी। वो लड़की जो हमेशा सपनों में जीती थी, रोमांटिक कहानियों की शौकीन थी, अपने सामने एक असली लव स्टोरी देखना चाहती थी। और अगर ये सच होता तो सारा को बेहद खुशी होती, क्योंकि उसे जोया बेहद पसंद थी। वो सचमुच चाहती थी कि जोया उसकी चाची बन जाए। 2 दिन बाद सुधीर की सगाई है, नावेद साहब ने सबको बताया। सुधीर मेहरा, किसी ने पूछा। हाँ, नावेद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, और रमेश मेहरा और उनकी वाइफ तो स्पेशल आए थे हमें इन्वाइट करने के लिए। बिजनेस की वजह से हमारी और उनके खानदान की बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि खुद आकर बुलाएं।
क्या ये सगाई और ये महफिल वो मौका बनेगी जहां जया और वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे? क्या सचमुच सारा के सपनों की चाची बनने की कड़ी यहीं से जुड़ जाएगी?